सुर्खियों में
नमस्कार। सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज पाठक। आज हम राष्ट्रमंडल देशों के लोकसभा अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की गतिविधियों पर चर्चा करेंगे। गौरतलब है कि आज ये सम्मेलन संविधान सदन में आरंभ हुआ है और यह सम्मेलन अगले 3 दिनों तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। हमारे साथ इस विषय पर चर्चा के लिए आमंत्रित हैं स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार संजीव चोपड़ा। संजीव जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
नमस्कार, थैंक यू।
सबसे पहले तो हम यही संजीव जी समझना चाहेंगे कि ये जो पीठासीन अधिकारियों का लोकसभा अध्यक्षों का सम्मेलन है, उसमें मुख्य रूप से किन विषयों को उठाया जाएगा, इस बार का थीम क्या है और कितने प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं?
इस बार का सबसे बड़ा उसका मुद्दा यही है कि इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, कि इफेक्टिव डिलीवरी कैसे करनी है। मेन मुद्दा तो यही है ये कॉन्फ्रेंस का, जहां स्पीकर्स करीब 45 देशों के, कॉमनवेल्थ देशों के स्पीकर्स और प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें अराउंड 229 पार्टिसिपेंट्स हैं और जो पीठासीन और अध्यक्ष हैं इसमें करीबन 65 से ऊपर हैं। तो इसका मेन मुद्दा इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है और इसमें 4 अलग अलग विषयों पर भी चर्चा होगी, जिसमें यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन पार्लियामेंट, यूज ऑफ सोशल मीडिया फॉर पार्लियामेंटेरियंस और हेल्थ इफेक्टिव डिलीवरी एंड पब्लिक एंगेजमेंट ऑफ पार्लियामेंटेरियंस एंड हेल्थ ऑफ पार्लियामेंटेरियंस एंड एम्प्लॉइज ऑफ पार्लियामेंट, इन 4 मुद्दों पर चर्चा भी होगी।
श्रोताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संविधान सदन के ऐतिहासिक परिसर में राष्ट्रमंडल देशों के 28वें CSPOC सम्मेलन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने बिंबों, प्रतीकों और विभिन्न कालखंडों का उदाहरण देते हुए प्रतिनिधियों को बताया कि भारत दुनिया भर में लोकतंत्र की माता के रूप में स्वीकार किया जाता है। प्रधानमंत्री ने एक ओर दुनिया के सबसे प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का उल्लेख किया तो दूसरी ओर उन्होंने 10वीं-11वीं शताब्दी के शिलालेखों का भी उल्लेख किया कि किस तरह विभिन्न कालखंडों में भारत के लोग लोकतांत्रिक पद्धति से अपने निर्णय लिया करते थे। संजीव जी, यहाँ पर समझना चाहेंगे प्रधानमंत्री ने मुख्य रूप से किन तथ्यों को पीठासीन अधिकारियों के समक्ष रखा?
जी, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री ने ये स्ट्रेस किया, शोकेस किया कि इंडिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। उन्होंने अपनी हिंदुस्तान की डाइवर्सिटी को भी अपनी स्ट्रेंथ बताई और उन्होंने बोला कि कैसे हिंदुस्तान ने अपनी डाइवर्सिटी को ही अपनी डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ बनाया। उन्होंने जैसे कहा शुरू में ही अपने भाषण के कि जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो लोगों ने कहा कि डेमोक्रेसी यहाँ चलेगी नहीं,
बिल्कुल,
कि इतने डाइवर्स कंट्री है, इतनी डाइवर्सिटी है, तो आशंका जताई कि डाइवर्सिटी शायद यहाँ ना चल सके और अगर चल भी पड़ी तो किसी तरह बाद में आके कहीं टूट जाएगी या मुश्किल हो जाएगा। लेकिन वही जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडिया ने अपनी डाइवर्सिटी को ही स्ट्रेंथ बनाया और जैसे उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि लास्ट जो इलेक्शन हुई, जैसे वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, सबसे पुरानी डेमोक्रेसी भी है क्योंकि यहाँ हजारों साल पहले हमारे वेद पुराण और पुराने जो मैनुस्क्रिप्ट्स हैं उनमें कैसे डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस प्रैक्टिस किए जाते थे हमारे देश में, उनकी भी चर्चा की उन्होंने। उन्होंने अपना स्केल बताया, स्केल बताते हुए कि 980 मिलियन वोटर्स पिछले 2024 के इलेक्शन में रजिस्टर हुए थे और वो संख्या इतनी ह्यूज है कि कुछ कॉन्टिनेंट्स की जनसंख्या से भी बड़ी ज्यादा है।
यहाँ पर श्रोताओं, बड़ा ही उल्लेखनीय तथ्य आपको देना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री ने जब भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर विभिन्न देशों द्वारा, विदेशी शक्तियों द्वारा यह आशंका जताने पर लोकतंत्र नहीं चलेगा, यह देश नहीं चलेगा, विकास नहीं करेगा, उन्होंने आंकड़े देकर साबित किया कि नंबर 1 वित्तीय लेन देन का तंत्र UPI हम दुनिया को दे रहे हैं। यानी उन्होंने आंकड़े दे देकर पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन को संबोधित किया है, यह जताने के लिए कि हमारा लोकतंत्र परिपक्व है, स्थिर गति से, तेज गति से विकसित हो रहा है और हम डिलीवर कर रहे हैं।
साथियों, भारत में डेमोक्रेसी इसलिए डिलीवर करती है क्योंकि हमारे देश में और भारत में देश की जनता ही हमारे लिए सर्वोपरि है। हमने उसकी एस्पिरेशंस को, जनता जनार्दन के सपनों को प्राथमिकता बनाया है। उसके रास्ते में कोई बाधा ना आए इसके लिए प्रोसेस से लेकर टेक्नोलॉजी तक हर चीज को डेमोक्रेटाइज किया है। और ये डेमोक्रेटिक स्पिरिट हमारी रगों में, हमारे मन में है, हमारे संस्कार में है।
हम आपके माध्यम से समझना चाहेंगे प्रधानमंत्री ने किन बिंदुओं पर विशेष रूप से फोकस किया।
जी, सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि हमारी डिबेट, डायलॉग और कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग की जो बहुत पुरानी ट्रेडिशन रही है, और उन्होंने ये भी कहा कि शोकेस किया कि इंडिया आज की डेट में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिजिटल पेमेंट यूपीआई सिस्टम जो है, मैं आपको बता दूं कि पिछले साल में 2025 में 228 बिलियन ट्रांजैक्शन हुई। मतलब आप उसका अंदाजा ही नहीं लगा सकते कि कितनी बड़ी। और लोग कुछ साल पहले, एक मुझे याद है वित्त मंत्री ने कुछ साल पहले हमारे को कहा था बजट प्रेजेंट करते वक्त कि हम कैसे कर सकेंगे, आम आदमी यहाँ डिजिटाइज नहीं है, टेलीफोन नहीं है, मोबाइल नेटवर्क नहीं है, हर एक के पास स्मार्टफोन नहीं है। लेकिन वो वक्त देखो और आज की डेट में देखो कि इंडिया लार्जेस्ट यूपीआई ट्रांजेक्शन वर्ल्ड में, मतलब कई विकसित देश भी नहीं कर पा रहे। आप सब्जी लेने जाओ, एक जिनको आप सोच रहे हैं कि आप पढ़े लिखे नहीं है ये इंसान, लेकिन वो भी कैसे डिजिटाइज, ही इज एम्पावर्ड है डिजिटल ट्रांजैक्शन करने में।
बिल्कुल।
फिर प्रधानमंत्री ने ये कहा कि हमारा वैक्सीन प्रोड्यूसर लार्जेस्ट है इंडिया। एक तरह से शोकेस किया कि इंडिया किन किन देशों में, मतलब सिर्फ पॉपुलेशन ही ज्यादा नहीं है इंडिया की, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड है स्टील के, थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है, मतलब जितने यूनिकॉर्न्स बने हैं इंडिया में या स्टार्टअप्स इतने प्रोत्साहित किया जा रहा है, फिर थर्ड लार्जेस्ट एविएशन मार्केट है, हालांकि अभी भी एविएशन मार्केट अभी डेवलप हो रही है, अभी इतनी ज्यादा डेवलप नहीं हुई, अभी और प्रोत्साहित किया जा रहा है उड़ान स्कीम के अंडर की आम आदमी भी जहाज में बैठे। फिर फोर्थ लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है, थर्ड लार्जेस्ट मेट्रो रेल नेटवर्क है इंडिया में, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क है, सेकेंड लार्जेस्ट वर्ल्ड में राइस प्रोड्यूसर है। सो उन्होंने ये बताया कि, और दूसरा उन्होंने ये भी बताया कि कैसे लास्ट माइल डिलीवरी, जैसे प्रधानमंत्री का भी हम सुन रहे थे कि हमारी डेमोक्रेसी डिलीवर करती है, और इस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बताया कि 25 करोड़ लोग पिछले कुछ सालों में पॉवर्टी से बाहर आए हैं।
बाहर आ गए। यहाँ पर हम ये समझना चाहेंगे, प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी और डेमोक्रेटिक जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उनमें उनकी संख्या को भी कोट किया, तो हम वो समझना चाहेंगे कि महिलाएं उदाहरण किनका दिया, ये हम आपके माध्यम से समझना चाहेंगे।
जी, सबसे पहले उन्होंने जब 980 मिलियन वोटर्स की बात करी कि इतनी लार्ज स्केल पे हमारी इलेक्शन हुई, तो उसमें उन्होंने बताया कि आधी से ज्यादा महिलाएं थी उसमें, कि महिलाएं कैसे बाहर आके वोटिंग करी। फिर उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि हमारी प्रथम नागरिक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक महिला है। फिर उन्होंने दिल्ली में जहां हैं हम, दिल्ली प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो भी एक महिला है। सो उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि कैसे महिलाएं अब आगे आ रही हैं हर फील्ड में।
श्रोताओं, भारतवर्ष संविधान लागू होने के 75वें वर्ष के अवसर पर जो यह पीठासीन अधिकारियों का चौथा सम्मेलन भारत में चौथी बार आयोजित हुआ है, उसमें एक से बढ़कर एक ऐतिहासिक तथ्यों को प्रधानमंत्री ने रखा। साथ ही ये कहा कि पूरे भारत ही नहीं बल्कि कॉमनवेल्थ से जुड़े हुए, आपसी एक सूत्र से जुड़े हुए जितने देश हैं, वहां सतत विकास हो सके उसके लिए भी हम महत्वपूर्ण तरीके से जिम्मेदारी निभा रहे हैं।
कॉमनवेल्थ की कुल जनसंख्या का लगभग 50% हिस्सा भारत में बसता है। कॉमनवेल्थ के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में हेल्थ, क्लाइमेट चेंज, इकोनॉमिक ग्रोथ और इनोवेशन के क्षेत्र में हम पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने कमिटमेंट्स को पूरा कर रहे हैं। आज जब दुनिया अभूतपूर्व परिवर्तन के दौर से गुजर रही है, तब ग्लोबल साउथ के लिए भी ये नए रास्ते बनाने का समय है। भारत हर ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर ग्लोबल साउथ के हितों को पूरी मजबूती से उठा रहा है।
संजीव जी, यहाँ हम समझना चाहेंगे ग्लोबल साउथ की मुखर आवाज भारत किस तरह बन रहा है। यदि हम एक दशक की यात्रा प्रधानमंत्री की देखें तो विभिन्न अवसरों पर वैश्विक संस्थाओं में भारत ही नहीं बल्कि ग्लोबल साउथ की आवाज को उठा रहे हैं प्रधानमंत्री, किस तरह?
जी, प्रधानमंत्री ने अपना एग्जाम्पल दिया कि जब इंडिया की G20 की प्रेसिडेंसी थी, जब प्रधानमंत्री खुद उसको इंडिया में दिल्ली में G20 का समिट हुआ, तो उस टाइम पे बोले प्रधानमंत्री जी ने कहा कि उसकी आवाज ग्लोबल साउथ की, जैसे आज की डेट में आप अनसर्टेनिटीज देख रहे हैं दुनिया में, एक तरह से द रूल ऑफ लॉ इज नॉट एप्लीकेबल, तो जिस तरह की अनसर्टेनिटीज चल रही हैं, तो ग्लोबल साउथ की आवाज को, ग्लोबल साउथ को प्रोटेक्ट करना और ग्लोबल साउथ की आवाज बनना, प्रधानमंत्री ने बोला कि हम इंडिया कैन हेल्प इन दैट ऑन दैट फ्रंट। और उन्होंने कहा कि जो इनोवेशन हम कर रहे हैं, तो हम ग्लोबल साउथ के साथ रेडी हैं, कॉमनवेल्थ के साथ रेडी हैं वो सब शेयर करने के लिए। और उन्होंने एक जिक्र किया कि ओपन सोर्स एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म भी बना रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजी इंडिया डेवलप करेगा वो ग्लोबल साउथ को भी प्रोवाइड करेगा, मतलब सबके साथ शेयर करेगा।
प्रधानमंत्री ने जब सपना देखा कि हर व्यक्ति का एक बैंक अकाउंट हो, वित्तीय समावेशन के लिए जनधन अकाउंट खोलना एक क्रांतिकारी उस समय में नई सोच थी जो सबकी समझ में नहीं आ रही थी, उसका लाभ आज UPI के चरम उपयोग के रूप में दिख रहा है। इसी तरह व्यक्ति की पहचान के लिए आधार एक ऐसा टूल साबित हुआ जिसमें आधार को एक अकाउंट को, बैंक के अकाउंट को और उसके मोबाइल को जोड़कर हम दुनिया के श्रेष्ठतम वित्तीय तंत्र निर्माता के रूप में आज जाने जा रहे हैं। यहाँ हम विविधता में विभिन्न समाचार अभिव्यक्ति के लिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा?
जब प्रधानमंत्री हमारी इलेक्शंस के बारे में बता रहे थे कि 2024 में जो इलेक्शन हुई तो उन्होंने कहा कि स्केल कितना बड़ा था हमारी डेमोक्रेसी में, 8,000 कैंडिडेट्स थे, 700 पॉलिटिकल पार्टीज थी, वुमेन पार्टिसिपेशन रिकॉर्ड हुई, उसके बाद डाइवर्सिटी की बात करते हुए हमारी रिचनेस इन डाइवर्सिटी जितनी है कि 900 ऐसे चैनल हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस में टीवी चैनल्स हमारे, विविधता इतनी ज्यादा है। और इसीलिए उन्होंने कहा कि यही हमारी डेमोक्रेसी की स्ट्रांग फाउंडेशन रही है, ये विविधता ही और यही इसकी स्ट्रेंथ रही।
श्रोताओं, यहां पर हम बताना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्रमंडल देशों के लोकसभा अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों से बताया कि हमारी भूमिका अपने अपने देश में क्या होनी चाहिए। एक अध्यक्ष का काम या पीठासीन अधिकारी का काम मुख्य रूप से किया हुआ करता है, उस पर भी उन्होंने अपनी बातें रखी।
In a parliamentary democracy, your role is that of the speaker. Interestingly, the speaker does not get to speak much. Their job is listening to other speakers and ensuring everybody gets a chance. One common thing about speakers is their patience. They handle even noisy and over-enthusiastic members with a smile. Friends, on this special occasion, I warmly welcome you, friends. जिस स्थान पर आप सभी बैठे हैं वो भारत की डेमोक्रेटिक जर्नी का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। जब भारत की आजादी तय हो चुकी थी उस समय इसी सेंट्रल हॉल में भारत के संविधान की रचना के लिए संविधान सभा की बैठकें हुई थी।
यहाँ पर हम संजीव जी समझना चाहेंगे कि भारतीय आजादी के जब 100 वर्ष पूरे होंगे 2047 के लिए, अब हम सभी तैयारी कर रहे हैं और ये जो चौथा सम्मेलन राष्ट्रमंडल देशों का हो रहा भारत में, उसमें जो विधायी प्रक्रियाएं हैं, जो संसद चलाने के अनुभव हैं, उसको प्रधानमंत्री ने शेयर किया और इशारा किया कि पीठासीन अधिकारी या लोकसभा अध्यक्ष मुख्य रूप से सुनते हैं, लेकिन सुनते हुए भी कुल मिलाकर वह अपना कर्तव्य किस प्रकार करते और यह सम्मेलन किस रूप में लाभकारी साबित होगा संपूर्ण समाज के लिए, राष्ट्रमंडल देशों के लिए, विशेष रूप से लोकतंत्र को और मजबूत बनाने में और डिलीवर करने में, क्या टिप्पणी करना चाहेंगे?
इस सम्मेलन का मुख्य मकसद यही था कि इफेक्टिव डिलीवरी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में कैसे हो।
जी,
तो इसमें जो चर्चा होगी ये सारी, ये एक बार हम भूल गए बताना कि ये चौथी बार है जब भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है।
जी,
पहले 1971 में करी, 1986 में करी, 2010 में करी और अब 2025 में। सो भारत बहुत इम्पोर्टेंट देश है कॉमनवेल्थ में, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यूज ऑफ सोशल मीडिया और कैसे, ये भी डिस्कशन का पार्ट है कि कैसे जो पीठाध्यक्ष हैं और स्पीकर्स हैं कॉमनवेल्थ के, हाउ दे हैव टू बी फेयर, कि अनफेयर नहीं हो सकते वो निष्पक्ष रहकर, क्योंकि जैसे जब बनते हैं वो तो किसी ना किसी पार्टी से एसोसिएट होते हैं पहले, लेकिन जब आप अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठ गए तो फिर आपके लिए सब साइड बराबर है।
बिल्कुल,
तो आपको सब सबको सेम उसी नजरिए से देखना है। सो हिंदुस्तान क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉमनवेल्थ का देश है और अब तो विकसित भारत की तरफ जैसे हम चल रहे हैं
जी,
तो जल्द ही हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे, तो ऐसे में भारत दिशा दिखा सकता है पूरी दुनिया को।
श्रोताओं की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद, थैंक यू।
इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR तथा YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
सुर्खियों में